मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 19 सितंबर 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आर्थिक गति के उपाय इस विषय पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही अलग अंदाज में। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं। पहली बात तो यह दोस्तों, इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बहुत ज्यादा इंक्वायरीज कर रहे हैं। मेरे पास जो मेल्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो AFEIS ने लॉन्च की है उसके प्रति बहुत उत्सुकता दिखा रहे हैं और तरह तरह के प्रश्न आप सबके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं, जो बहुत स्वाभाविक ही है। इसके बारे में धीरे धीरे आप लोगों तक सारे आपकी जो इंक्वायरीज हैं उनके उत्तर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज मैं जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लेकर बताना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड हैं। रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो लेक्चर्स आप सुनेंगे वो पहले से ही रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके विरोध में आप यूं कह लीजिए कि एक लाइव क्लासेस होती हैं ना, बहुत से संस्थानों ने लाइव क्लासेस भी लॉन्च की हैं कि क्लास चल रही है और उस क्लास को आप अपने घर पर बैठ करके बड़े आराम से अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर देख सकते हैं। तो देखिए, पैटर्न सब अपने अपने ढंग से अपनाते हैं। किसी को किसी तरह की क्लास चाहिए, किसी तरह को किसी तरह की क्लासेस लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो अपने अपने ढंग से लोग अपनी अपनी प्रणालियां लेते हैं। हम लोगों ने रिकॉर्डेड सिस्टम को अपनाया है। ये जो लेक्चर हैं ये बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से पहले से रिकॉर्ड किए गए हैं और केवल रिकॉर्ड ही नहीं किए गए हैं बल्कि इनकी बाकायदे एडिटिंग हुई है, और एडिटिंग ही नहीं हुई है बल्कि बाकायदे इनमें फिर इन्हें एनिमेटेड भी किया गया है। यानी कि जहां जरूरत है स्क्रीन पर चीजें दिखाई गई हैं, लिखे गए हैं, विजुअल्स दिखाए गए हैं, चार्ट बनाए गए हैं ताकि आपके दिमाग में जो भी आप सुन रहे हैं उनकी इमेजेस बहुत गाढ़ी बन जाएं। और आप जानते हैं कि पढ़ने का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है कि हम अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हैं पढ़ते समय वो कितने अधिक गाढ़े होते हैं। इमेजेस आपके जितने गाढ़े होंगे उतनी ही वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएंगी, और उससे भी बड़ी बात है कि वो उतने लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, वो जल्दी फेड आउट नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर हैं ये बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किए गए हैं, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये मेरे ही हैं। तो मित्रों, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के बारे में दी है। डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप वहां क्लिक कीजिए class.afeis.com, वहां इसके बारे में सारी जानकारियां बहुत विस्तार से उपलब्ध कराई गई हैं। फ्रेंड्स, आइए पहले कुछ और दूसरी खबरों को देख लेते हैं। ई सिगरेट के बारे में आज आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा और कल न्यूज में भी सुना। ई सिगरेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, देखिए कि क्या कमाल हो रहा है ना, सिगरेट भी अब इलेक्ट्रॉनिक की आ गई। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका सिस्टम आप यूं कह लीजिए कि एक हुक्का की तरह का सिस्टम है। हुक्का तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हरियाणा में तो बड़ा प्रिय है ये कि बकायदे एक ऊपर कटोरी जैसी होती है, उसमें अंगार डले रहते हैं, फिर तंबाकू वगैरह डाल दिया जाता है और वो जो कटोरी जैसा जो हिस्सा है वो बकायदे एक नली से जुड़ा हुआ होता है और आपके हाथ में वो नली होती है और फिर आप उसे फूंक फूंक मतलब उसे पीते हैं। वो जो धुआं है उस नली के माध्यम से होता हुआ आपके मुंह तक पहुंचता है। ये जो ई सिगरेट है वो इसी तरह का एक उपकरण है, उसमें अंदर भी इसी तरह की चीजें डली हुई होती हैं, फिर आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली जला देते हैं जैसे कि बिजली जलती है। तो आप कह लीजिए कि यहां जो धुएं का उत्पादन हो रहा है वो कोयले से न होकर के बिजली से हो रहा है, फिर वह धुआं आप इनहेल करते हैं। चूंकि साइंस का थोड़ा सा पार्ट है तो एक शब्द मैं आपको विशेष रूप से यहां बताना चाहूंगा, वो है एरोसॉल। एरोसॉल, ये जो एरोसॉल है ये यूं कह लीजिए कि इस ई सिगरेट में उपयोग किया जाने वाला तंबाकू है। तंबाकू की जगह ये एरोसॉल उपयोग में लाया जाता है और बस उसी पैटर्न पर ये काम करता है। तो दोस्तों, थोड़ी सा इस शब्द को आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। आपको मालूम है कि सरकार ने ई सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया है, उसके लिए अध्यादेश लेकर के सरकार आएगी। देखिए, जब अध्यादेश लेकर आती है सरकार तो ये मान करके चलिए कि ये उसकी बहुत ही प्रायोरिटी लिस्ट में है, नहीं तो कानून भी तो बना सकते थे, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए 3-4 सालों में ही भारत में ई सिगरेट का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है ना। 3-4 साल और थे, पार्लियामेंट जब सेशन में आता तब उस पर अधिनियम ले आते और बैन कर देते। लेकिन अगर सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है तो इसका मतलब है कि सरकार इसे बहुत ही प्रायोरिटी का काम मान रही है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो अध्यादेश के बारे में तो आपको मालूम होगा ही, नहीं मालूम है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और ये ई सिगरेट प्रतिबंधित हो जाएगा, हर दृष्टि से प्रतिबंधित हो जाएगा कि आप स्टोर नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। और इसके पीछे रीजन ये है कि अमेरिका में ई सिगरेट का जो प्रचलन है वो लगभग लगभग 78% स्टूडेंट में हो गया है, 78%, और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक है। हैजार्डियस है, सोच करके देखिए कि जब जो स्टूडेंट होता है उसकी उम्र कितनी होती, बहुत कम होती है, और उस दौरान अगर वो निकोटीन को इस तरह से इनहेल कर रहा है तो डेफिनेटली स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ना ही है। दोस्तों जो दूसरी खबर आपने सुनी वो विनेश फोगाट का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं 2020 में, और ये जो 2020 में ओलंपिक होना है ये टोक्यो में होना है। एक खबर आपने और भी सुनी कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो सैलरी है उस सैलरी का ही 78 दिनों की जो सैलरी होगी वो उन्हें बोनस के रूप में दिया जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बोनस के बारे में बता दूं, हालांकि बहुत ही सरल सा शब्द है और आप सब जानते भी होंगे, लेकिन जो परिभाषा है बेसिकली हिंदी में इसे कहा जाता है लाभांश, हालांकि हिंदी में भी अब इसे बोनस ही कहा जाने लगा है, यानी कि लाभ का अंश। शुरू में इसका यही कॉन्सेप्ट था, जैसे एक फैक्ट्री है, मान लीजिए उस फैक्ट्री में बहुत लोग का 100 लोग काम कर रहे हैं, अब उस फैक्ट्री को 1 साल में 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, यानी कि 100 लाख का फायदा हो गया, तो फैक्ट्री ये मान करके चलती है कि हमारे यहाँ जो 100 लोग काम कर रहे हैं इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, बहुत ईमानदारी से काम किया और तभी हम 1 करोड़ रुपए कमा भी पाए हैं, तो अच्छा होगा कि अपनी इस कमाई का यानी कि लाभ का कुछ हिस्सा अंश अपने कर्मचारियों को भी दे दिया जाए, उसे ही सामान्य रूप में कहा जाता है मित्रों बोनस। लेकिन अब थोड़ा सा ये सीधे सीधे लाभांश से न जुड़ करके एक प्रोत्साहन देने वाला भी फैक्टर इसमें काम करने लगा है कि ठीक है चलिए हमें उतना फायदा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ज्यादातर कर्मचारियों को ही मिलता है तो इन्हें बोनस दिया जाए, तो एक इंसेंटिव के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर भी बोनस दिया जाने लगा है। तो ये बोनस के बारे में थोड़ी सी बातें थी। एक खबर आपने कल सुनी जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बिल्कुल कह दिया है कि जो सुनवाई होनी है अयोध्या मामले में, सुनवाई हो रही है, आपको मालूम है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर तक इसकी सुनवाई होगी और इसके बाद सुनवाई बंद हो जाएगी और जो फैक्ट सामने होंगे उन्हीं का अध्ययन करके फिर जो हमारे जजेस हैं वो अपना डिसीजन देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जजेस को भी डिसीजन देने के लिए 1 महीने का समय तो लग ही जाता है। यहां जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मायने में एक डेडलाइन दे दी, 18 अक्टूबर तक सुनवाई होगी, आपके पास जो भी फैक्ट हैं, आपको जो भी कहना है, आपके पास जो भी दस्तावेज हैं आप इकट्ठे कर लीजिए और 18 अक्टूबर तक ला करके दे दीजिए, कोर्ट के सामने रख दीजिए, इसके बाद कोई इस पर बात नहीं होगी। ये अयोध्या मामले में किया गया है, इसको आप अब थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, और विस्तार इस मायने में कि अगर इस मायने मामले में किया जा सकता है तो क्या सभी मामलों में नहीं किया जा सकता, एक डेडलाइन फिक्स कर दी जाए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकता है, सेशन कोर्ट भी ऐसा कर सकते हैं, उससे उसके अधीन और उसके नीचे जो कोर्ट है, जो आपके तहसील स्तर पर कोर्ट है, वो भी ऐसा कर सकते हैं कि एक डेडलाइन फिक्स है, मामले को देखते हुए, मामले की जटिलताओं को देखते हुए, उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कि बस ये आखिरी डेट है, आप दे दीजिए और फिर फैसला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा करके एक तरीके से हम जो बार बार कानून में सुधार, न्यायपालिका में सुधार की बात करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि एक बहुत अच्छी खबर यह भी है कि अयोध्या के मामले को सुलझाने के लिए कुछ कहा गया है कि फिर से मध्यस्थता आपस में बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है, तो न्यायालय ने कहा कि हाँ सुलझा लीजिए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फ्रेंड्स आज के करंट कंटेंट में एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल डाला गया है जो अरविंद पनगढ़िया जी का लिखा हुआ है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था। वो उसका शीर्षक है सही निशाना लगाने की आवश्यकता। यहां जो सही निशाना लगाने की आवश्यकता है ये बेसिकली आर्थिक गति का ही मामला है, यानी कि हम अपने देश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है जो घट करके लगभग 5% तक आ गई है कहा जा रहा है, जो इससे पहले लगभग औसतन 7.5% थी, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सच पूछे तो मेरा आज का जो मुख्य विषय है वो मूलतः इसी आर्टिकल पर आधारित है। मैं आपको आर्थिक गति के क्या उपाय, हालांकि शीर्षक मैंने यही रखा है, मैं बताने नहीं जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि जब आप इस तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको कैसे इन आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैंने आपको हिंदुस्तान का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था जो 16 सितंबर को छपा था कि उनकी उम्मीदें बदल रही हैं राजनीति, और उनकी का मतलब है जो दलित वर्ग है, कि इसके बारे में मैं बात करूं कि आपने ये आर्टिकल पढ़ने के बाद इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं, कौन कौन से आपको नोट करने चाहिए, इसके बारे में मैं आप सबको बताऊं। लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि नहीं, ये आर्टिकल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थशास्त्र का है, और अर्थशास्त्र के आर्टिकल की विशेषता ये होती है कि ये आपसे बहुत अधिक व्याख्या की मांग करते हैं। अगर आप स्ट्रेट तरीके से सोचेंगे कि इन्हें आप पढ़ लें और रट लें तो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब आप उन्हें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, देखिए इसको आप आजमा कर देखिए, जब मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनकर उसे व्यवहार में लाएंगे तो आप पाएंगे कि इसी आर्टिकल को समझना आपके लिए कितना आसान हो गया है। और यह आर्टिकल, जब कोई भी चीज़ देखिए आसान हो जाती है तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से मौजूद भी रहती है। तो इसमें देखिए कि उन्होंने जो सबसे बड़ा रीज़न बताया है वो है हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो वित्तीय क्षेत्र है, उसकी कमजोरी। और उसकी दो सबसे बड़ी कमजोरियां उन्होंने बताई हैं। पहला तो यह है कि हमारे जो बैंक हैं उन्होंने जो कर्ज दिया है उनका दिया हुआ कर्ज वापस नहीं आ पा रहा है। अब कर्ज वापस नहीं आ पा रहा है, इसके सीधे सीधे दो तीन कारण हैं। नंबर वन, हो सकता है कि कुछ लोग गड़बड़ी भी कर रहे हैं, उन्हें वापस देना चाहिए वो नहीं दे रहे हों। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस चीज के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, जिस कंपनी के लिए, जिस उद्योग के लिए, वह उद्योग फेल हो गया हो। कारण जो भी हो, लेकिन चूंकि बैंकों के पास पैसा वापस नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि बैंकों के पास अब उतना धन है नहीं कि वो उस पैसे को और किसी दूसरे को देते, अब वो ऐसा कर सके, तो बैंक हमारे कमजोर हो रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने रीजन दिया वो दिया कि सरकार ने अभी बजट में कुछ प्रोविजंस किए हैं, उसकी वजह से सेंटिमेंट डाउन हुए लोगों की। जैसे उन्होंने आयकर पर सरचार्ज लगा दिया। आयकर पर सरचार्ज क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं इनके डिटेल्स आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं केवल इशारे के तौर पर जरूर कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा जो आपको अपने लेवल पर समझना है, क्योंकि मैं यहां यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस आर्टिकल को समझेंगे कैसे। फिर उन्होंने दिया है उत्पादों पर सुरक्षात्मक सीमा शुल्क। आपको समझना होगा कि ये क्या होता है और इसके कारण कैसे हमारे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने और भी एक पॉइंट दिया है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के पूरा न होने पर जेल की सजा की घोषणा, इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये टोटल मिलाकर के फिर कैसे जो सरकार की जो एक लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी होती है उसके प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है। और इसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट दिया है, लेबर कोड में सुधार होने की उम्मीद अब लोग खत्म कर चुके हैं। तो आपको यह भी समझना होगा कि ये जो संहिता है लेबर कोड से संबंधित, लेबर से संबंधित, इसका इससे क्या संबंध है, आर्थिक गतिविधियों से क्या संबंध है। फिर देखिए इन्होंने कुछ समाधान बताए हैं। समाधान बताया है दिवालियापन के कानून में सुधार। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि अभी जो दिवालिया वाला कानून जो सरकार ने बनाया है उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका विपरीत प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था की गति पर पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने तो एक लाइन कह दिया कि दिवालियापन का जो कानून बना है उसमें सुधार किया जाए, तो उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है ये डिटेल में उन्होंने नहीं बताया है। फिर अगला पॉइंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे जो बैंक है उनका निजीकरण कर दिया जाए। तो भाई निजीकरण कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये सारी बातें आपको बाकायदे सोचनी होंगी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, कही है, देखिए अर्थशास्त्री ने कही है ना, सामान्य व्यक्ति का लेख नहीं है ये। उन्होंने कहा है कि रुपए की जो कीमत है उसमें गिरावट करनी चाहिए, मतलब रुपए की कीमत को और गिरा देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। अब सामान्य रूप में जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार कि हमारे रुपए की कीमत अगर गिर जाएगी तो हमको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसके आगे बकायदे उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि अगर रुपए की कीमत गिरा दी जाती है, या यूं कह लीजिए कि रुपए का अवमूल्यन कर दिया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव भारतीय उद्योग पर पड़ेगा, इसे भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि समझने के बाद जो पैटर्न मैंने अभी आपको कम समय में जितना भी मैं बता सका हूं, उनको करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ है, आपके अपने क्या उसके ऊपर फीडबैक हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, प्लीज मुझे बताइए। देखिए, मैं आपके फीडबैक इसलिए जानना चाहता हूं ताकि मैं अपनी दिशा को सही बनाए रख सकूं। मेरा पर्पस आप लोगों के लिए काम करना है, और अगर आप लोग मुझे बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, मैं सही काम कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, उसमें मुझे क्या सुधार करने चाहिए, किस तरह के सुधार करने चाहिए, ये आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से ही पता लगेगा। तो प्लीज ईमेल के जरिए मुझे आप इसकी सूचना भी अगर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं शांतनु सा, लुंग थावुना रोंगमेई मणिपुर से, और एलिया नकवी। आप सबका बहुत बहुत आभार। और साथियों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।